हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 12। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण एवं श्रवण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्व पदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दीक्षतां तमोधम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्त्याखं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हमारा परम सौभाग्य है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों को दे रहे हैं, वो वेद व्यास जी की कृपा से हम सब उन उत्तरों का श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में भक्तों, ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, वो वेद व्यास जी ने समाधि की अवस्था में लिखा, मतलब वो समाधि में लीन हो गए और फिर उनको जो जो प्रेरणा मिलती गई वही उन्होंने लिखा। और हमने अभी जो श्लोक नंबर ये हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7 और 8 में ये श्रीमद् भागवतम किस तरह से रचा गया वो सब आगे आएगा. लेकिन उस समाधि की अवस्था में जो उनको परम सत्य से प्रेरणा मिलती थी वही वेदव्यास जी इस शास्त्र में लिखते. और इस हमने कल जो श्लोक पढ़ा था श्लोक नंबर 11 उसमें साफ साफ बताया उन्होंने वदंती तत्तत्विदस्तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते कि वास्तव में जो तत्वज्ञानी हैं वो उस अद्वैत तत्व के विषय में क्या बताते हैं कि उसके तीन फेस हैं. ब्रह्मेति यानी जो ज्ञानी जन है वो उसको ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म कहकर संबोधित करते हैं या उसी तरह से समझते हैं. और जो ध्यानी है वो हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा के रूप में उनको बजते हैं. और जो भक्त हैं वो उसे भगवान समझते हैं. यानी जो निराकार भगवान का तस्वर है उसमें क्या है सिर्फ एक ज्योति है और उसी ज्योति में समा जाना है. आगे उससे थोड़े जो बड़े हुए बड़े चढ़े हैं वो क्या सोचते हैं कि जिस पर हम ध्यान लगाते हैं और जो हमारे हृदय में रहता है वही परम सत्य है. और जो भक्त होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये जो परम सत्य है ना जो वृंदावन में अपनी प्रेम लीलाएं कर रहा है जो अपने वात्सल्य भाव को और सखा भाव को और माधुर्य भाव को इतना प्रदर्शित कर रहा है और जो द्वारिका में लीला करता है जो मथुरा में लीला करता है और ये जो लीलाधारी है वही परम सत्य. यानी कि मानते वो क्या मानते हैं जो भक्त होते हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि यही परम सत्य ब्रह्म भी है और परमात्मा भी है लेकिन उसकी वास्तविकता यही साकार स्वरूप है. तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती थी कि वेदव्यास जी ने अपने मुखारविंद से सिर्फ तीन के विषय में बताया कि परम सत्य के तीन फेस बताए क्या ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते. तो चौथा कोई भी तत्व नहीं हो सकता. यानी कि वेदव्यास जी ने समाधि में जो परम सत्य ने उनको प्रेरणा दी है यानी कि वो खुद भगवान की शक्ति आवेश अवतार और इसीलिए संसार में आए कि वो शास्त्र का अध्ययन करें और शास्त्रियों को लिपिबद्ध करें. और उन्होंने समस्त शास्त्र पढ़ने के बाद समस्त शास्त्र लिखने के बाद यह निर्णय दिया कि परम सत्य के सिर्फ और सिर्फ तीन फेस हो सकते हैं. अब समाधि में जब वो थे तो उन्होंने परम सत्य के साकार रूप का भी दर्शन किया और परम सत्य के निराकार रूप का परमात्मा के रूप का भी दर्शन किया और इन तीनों के विषय में लिख कर बता दिया. लेकिन साथ में ये बात भी है ना समझने की है कि उन्होंने समाधि की अवस्था में जीव को जीव तत्व को भी दर्शन किया लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि परम सत्य के चार फेस हैं एक जीव तत्व भी है. ऐसे नहीं बोला ना बस ये बोला कि परम सत्य के तीन फेस हैं. इसका मतलब होता है जीव कभी भी परम सत्य नहीं बन सकता. जो लोग सोचते हैं कि है ना हम भी भक्ति करने के बाद या फिर है ना जब सिद्धि प्राप्त होगी तो हम परम सत्य में समा जाएंगे या फिर अना ब्रह्म में समा जाएंगे तो हम भी ब्रह्म बन जाएंगे. ऐसा नहीं है. ये धारणा बिल्कुल गलत है जो ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही परम सत्य हूँ. वो धारणा इस श्लोक के ऊपर आधारित नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वेदव्यास जी लिखते ना कि जीव परम सत्य है लेकिन जब वो माया से इस संसार से विरक्त हो जाए यानी कि जब इस संसार की मोह माया से छूट जाएगा तो वो ब्रह्म बन जाएगा ऐसे बता देना. लेकिन वास्तव में जीव माया में है. माया का मतलब होता है अंधकार. श्री कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार. याहार माया ताहार नहीं याहार कृष्ण ताहार नहीं माया रे अधिकार. अब जहाँ पर कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं है. और जीव क्या है जीव माया में है लेकिन जब कृष्ण आ जाते हैं उसके जीवन में तो माया समाप्त हो जाती. फिर यहाँ से ये बात समझ में आती तो फिर वो भी ना परम सत्य बन सकता है जब माया समाप्त हो गई। नहीं, माया क्या है कि जीव प्रभुत्व जताना चाहता है। माया तब तक जीव की जान नहीं छोड़ती जब जीव ये रियलाइज कर ले, जब तक जीव ये नहीं मान लेता है कि भगवान का दास हूं। वास्तव में सबसे बड़ी माया यही है कि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। अंधकार, माया का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का मतलब होता है अज्ञान। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि जीव ये भूल गया है कि मैं भगवान का दास हूँ। तो माया जब समाप्त होती है तब जीव को ये याद आ जाता है कि मैं भगवान का एक दास हूँ। अपना स्वरूप याद आ जाता है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये अज्ञान खत्म करने जब खत्म हुआ तो समझो आपके आपकी वास्तविकता पता चल गई। और वास्तविकता क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ। जब भगवान का दास आपको पता चल गया तो आप फिर ब्रह्म कैसे बन सकते हो, ब्रह्म में तदाकार कैसे हो सकते हो। फिर तो दास बन गए, असलियत पता चल गई, चलो अपनी ड्यूटी करो, सेवा करो भगवान की, भगवान बनने की क्या जरूरत। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि जीव चाहे किसी भी स्थिति में चला जाए वो कभी भी ब्रह्म या परम सत्य नहीं बन सकता। तो हमने परम सत्य के तीन फेज पढ़े, परम सत्य के विषय में जो तत्वज्ञ हैं, जो तत्ववेत्ता हैं, वो कैसे कहते हैं कि वो क्या अद्वैत है, उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और इस परम तत्व की जिज्ञासा को यानी इसके विषय में जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जान लिया कि वो क्या है, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, जान लिया। अब जानना क्या काफी है, बहुत सारे लोग को पता चल जाता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो ये जानना काफी नहीं है, उसे प्राप्त करना है। संतुष्टि तभी होगी जब हम परम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो भगवान को प्राप्त करने का कौन सा सरल मार्ग है वो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12 में। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सोनिक जी कहते हैं, तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया। पश्यन्त्यात्मनिचात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। शब्दों का अर्थ देखिए। तद यानी वह, श्रद्धाधाना यानी अत्यधिक जिज्ञासु। अब वो जो भगवान को या परम सत्य को प्राप्त करना चाहता है उसके अंदर पहली क्वालिटी बताते हैं श्रद्धाधाना। बहुत बहुत श्रद्धा जिसके अंदर हो उसको बोलते हैं श्रद्धाधाना। हमें ये याद होगा कि यही शब्द भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 9.3 में भी बताते हैं, लेकिन श्रद्धाधाना नहीं बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अश्रद्धाधाना। भगवान क्या कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य माम् निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो वहां भगवान ने बताया अश्रद्धाधाना यानी जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो वो अप्राप्य माम् निवर्तन्ति, जो भगवान की भक्ति में शुद्ध अश्रद्धाधाना पुरुषो धर्मस्य परन्तप, हे परन्तप जिसको भगवान की भक्ति में या धर्म में, धर्म के विषय में बताया कि धर्म हमारा एक ही है जिसके कारण हम भगवान के मोक्ष को प्राप्त करें अर्थात भक्ति। भक्ति को क्या बताया, संकुचित करके एक ही शब्द में बताया कि भक्ति क्या है, भगवान के विषय में श्रवण करना। तो यदि भक्ति में यानी धर्म में यानी श्रवण में श्रद्धा नहीं है तत्श्रद्धा, तो भगवान क्या कहते हैं अश्रद्धाधाना पुरुषा धर्म से आशा परंतपा, जिसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है वो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार मर्त्मनि, उसको तो साइड में ही रख दो। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, बलि में सबके लिए एक जैसा हूँ लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, वो बारम्बार इस संसार मृत्यु संसार में आता रहेगा और प्राप्य माम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। और आज हम उसी चीज को यहाँ पर सोनिक ऋषियों को बता रहे हैं कि देखो सबसे पहली क्वालिटी जो आपके अंदर हो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो है श्रद्धा। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि श्रद्धा का मतलब क्या है, पहले श्रद्धा का मतलब पता हो फिर हमें पता चलेगा कि फिर हम सेकंड पे आएंगे कि श्रद्धा हासिल कहाँ से की जाए। पहला है श्रद्धा का क्या मतलब है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर श्रद्धा का मतलब बताते हैं चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 22.62 में। महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, ऐसा विश्वास जो सुदृढ़ हो। सुदृढ़ का क्या मतलब होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उस विश्वास को हटा ना सके, मतलब उस विश्वास को खंडित ना कर सके, वो होता है वो होती है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहीं सुदृढ़ निश्चय। तो यहाँ पर ये आता प्रश्न कि किसी भी चीज में ऐसा विश्वास हम रख सकते हैं जो कि खंडित ना हो तो वो श्रद्धा कहलाएगा। नहीं, महाप्रभु ने किसी भी चीज के अंदर, जैसे श्रद्धा तो फिर हम किसी में भी रख सकते हैं, किसी देवी देवता में भी रख सकते हैं, किसी है ना पीर पैगंबर फकीर में भी रख सकते हैं, किसी समाधि में भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, महाप्रभु ने एकदम क्लियर बताया श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कौले सर्वकर्मकृत है कि आपके हृदय में यदि इस बात पर सुदृढ़ श्रद्धा है कि आप यदि कृष्ण की भक्ति करोगे, यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो केवल एक ही बात पर श्रद्धा होनी चाहिए कि यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण मिलेंगे 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 जरूर मिलेंगे, मुझे खाली श्रवण करना है और मुझे भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, बस श्रवण करते रहना है भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान अवश्य मिलेंगे, बस केवल मुझे भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति का अर्थ है श्रवण और कीर्तन, कि बस मुझे यही करना यही करना। और जिसके हृदय में ये श्रद्धा है कि मैं भगवान की कथाओं का श्रवण करूंगा और भगवान के पवित्र नाम का जप, बस कलयुग में यही दो साधन है भक्ति के, और जब मैं ये करूंगा तो भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे। तो यही है श्रद्धा। तो पहला गुण क्या होगा कि वो श्रद्धा उसके अंदर हो। और पता है श्रद्धा का क्या प्रमाण है? कोई बोल सकता है कि भाई मेरे अंदर श्रद्धा है, मैं भी अना भगवान कृष्ण, यानी कि ये मुझे विश्वास है कि कृष्ण की भक्ति करके ही मुझे अना कृष्ण प्राप्त होंगे। किसी को ये श्रद्धा हो जाए, दिल से पता चल जाए कि कृष्ण की भक्ति यानी श्रवण और कीर्तन करके ही भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उस श्रद्धा का प्रमाण क्या है? यानी कि फिर श्रद्धा हो जाना काफी है क्या? नहीं, श्रद्धा का प्रमाण ये है कि वो व्यक्ति कर क्या रहा है। श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए शास्त्र कहता है कि जिसके हृदय में ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि कृष्ण भक्ति को अले सर्व कर्म कृत हो, तो वो सबसे पहला कार्यकार क्या करेगा? भक्तों का संग करेगा, है ना। अब ऐसा श्री प्रभुपाद जी श्रीमद भागवतम के अंतिम स्कंद के जो कपड़ हैं उन्हें बताते कि अकेले भक्ति करना संभव नहीं है। आप चाहे कितने भी महान भक्त बन जाओ, भक्ति अकेले नहीं की जाती है, भक्ति भक्तों के संग में रहकर की जा सकती है। भले कोई न्यू डिवोटी हो तो उसे तो संग चाहिए चाहिए, क्योंकि उसको तो खबर ही नहीं है क्या कैसे करनी है भक्ति। लेकिन अगर आप सीनियर भी हो जाते हो तो भी आप अकेले रहकर कभी भी माया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है? भक्तों का संग करना है। और ये है श्रद्धा। बस भक्तों का संग अर्थात भक्त होंगे आपके साथ तो सदैव भक्तों, फिर भक्तों में भी हमें ये पहचान रखनी है कि किस तरह के भक्तों का संग करना है। ऐसा नहीं बस उसने तिलक लगाया और कंठी पहनी है तो हम उसको भक्त समझ लें, नहीं। स्वरूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर भक्तों के संग की व्याख्या करते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम् मनसादिता। जो कृष्ण का नाम लेते हैं उनको मन से आदर दो, बहुत आदर करो उनका। और दीक्षास्ति चेत् प्रति भीष्य बदन्तमीशम्, जो दीक्षा ले लेते हैं और विग्रह पूजा स्टार्ट कर लेते हैं उनको बहुत बहुत मन से आदर दो। दीक्षाति चेत् प्रणति, उनको प्रणाम करो, मन से आदर दो, उनका भी प्रणाम करो, सत्कार करो। यहाँ पर ये नहीं कहा कि उनका संग करो, फिर संग किसका करें? शुश्रूषया भजन पिच्छवनन्यमन्य निंदादि शून्य हृदमीप्सित संगलब्ध। जो किसी की निंदा नहीं करते हैं, निंदादि शून्य, वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का अनन्य मन से भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, बात बात में दूसरों की निंदा करना शुरू नहीं हो जाते। उनका लक्ष्य क्या होता है कि कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे भगवान के विषय में श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं का उच्चारण कर। वो ये नहीं बार बार बता दे कि ये सही नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा, नहीं, वो निंदा नहीं कर रहा सामने वाले कोई भी हो। वास्तव में भक्तों, सबसे बड़ा अपराध है निंदा करना, तो हमें उससे बचना चाहिए। अगर किसी भक्त का आचरण सही नहीं है ना तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आचरण निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? भक्ति करना। किसी भक्त के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहा है। वास्तव में प्रचार का विषय क्या होना चाहिए? भक्ति। प्रचार का विषय निंदा नहीं होना चाहिए, लोगों को भक्ति करना सिखाओ। भगवान ने स्वयं कहा, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। अगर कोई मेरा भजन कर रहा है, भजन्ते माम अनन्य भाव, मेरे नाम का निरंतर जप कर रहा है और मेरी कथाओं का श्रवण कर रहा है, मुझे भजता है अनन्य भाव, फिर अपि चेत् सुदुराचारो, वो अगर दुराचारी है, उसका आचरण सही नहीं है, तो भी खबरदार साधु रेव समन्तव्य, उसे साधु समझना है। आप देखना मेरी भक्ति के अंदर इतना पावर है, क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जो भक्ति करता है उसके अंदर धर्मात्माओं के गुण आना स्वाभाविक है। हमने पहले पढ़ा ना श्लोक नंबर 7 में, वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। कि जो भगवान वासुदेव की भक्ति करता है उसके अंदर वैराग्य संसारिक आकर्षण, अपराध क्यों करता है जीव सांसारिक आकर्षण के कारण, लेकिन जो वास्तव में भगवान की पवित्र नाम का जप करना शुरू कर देता है और भक्तों के संग में भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो उसके अंदर वैराग्य आना स्वाभाविक है। भक्तों को नहीं बता भले बताओ नहीं कि आपको सादा कपड़े पहनने चाहिए, आप सादा रहना चाहिए, आपको इतना ग्लैमर नहीं होना चाहिए लाइफ में, ये सब नहीं बताओ भले। भक्तों को खाली भगवान की भक्ति के विषय में बताओ, भगवान की भक्ति में क्या आनंद आ रहा है वो बताओ, अपराध स्वयं छूटेंगे। भगवान ने कह दिया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कि वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा, अब उसको भक्ति करना सिखाओ। तो भक्ति किससे मिलेगी, सबसे पहले तो भक्तों का संग करने से। भक्त अब इसका क्या प्रमाण है, दीदी आपके अंदर भले कोई भी क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी लेस हो, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन भक्तों का संग आप इस बात का प्रमाण है कि आपको भगवान मिलेंगे मिलेंगे जरूर मिलेंगे। कैसे हम जानते हैं, जब राक्षस रावण सीता महारानी को उठा के लेकर जा रहे थे तो उस समय सीता जी ने अपने आभूषण उतारे और पोटली बना के नीचे जहाँ पर किष्कंधा नगरी में सुग्रीव और बाली रहते थे ये वानर, तो वहां पर फेंकी। सीता महारानी जगत जननी उनको पता था कि मैं किसके लिए फेंक रही हूँ, सुग्रीव जी के लिए उन्हें पता था। भले हालांकि वो यह पोटली बाली के यहाँ पर भी फेंक सकती थी, हम जानते कि बाली बहुत शक्तिमान था, बहुत शक्तिमान था। और बाद में लक्ष्मण जी ने पूछा था एक बार श्री राम से कि बाली के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, वो अपने रावण को अपने कुख में बांध कर घूमता है, मतलब इसके अंदर इतना ज्यादा पावर है, तो फिर हम सुग्रीव से मित्रता क्यों कर रहे हैं। सुग्रीव से मित्रता समझ में आई नहीं मुझे बात, अगर उससे करेंगे तो हमारा ज्यादा लाभ होगा और वो हमारी ज्यादा सहायता कर सकेगा। तो श्री राम ने बताया कि देखो लक्ष्मण, सीता को प्राप्त करने के लिए या रावण को जीतने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। लेकिन ये जो सुग्रीव के साथ मित्रता है वो केवल इसलिए क्योंकि भक्ति महारानी ने उसे स्वीकार किया है, मेरी सीता ने इसके ऊपर कृपा की है। और अब ये प्रश्न उठता है कि सीता ने क्यों कृपा की उसके ऊपर, सीता जी ने यानी भक्ति महारानी ने उनके ऊपर इसलिए कृपा की क्योंकि वो भक्तों का संग करते थे, परम भक्त भगवान जी के श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का साथ दिया था उन्होंने। और भक्त जहाँ पर होते हैं वहां पर भक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। अब क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ थे या सुग्रीव जी ने हनुमान जी को अपने हनुमान जी का संग किया था यानी भक्त का संग किया था, तो जहाँ भक्त का संग है वहां पर भक्ति का आना अनिवार्य है। और भक्ति महारानी वहां पर आई जाती है जहाँ पर सर, और एक बार भक्ति महारानी ने आशीर्वाद दे दिया फिर भगवान उसकी, हालांकि अगर हम रामायण को थोड़ा सा देखते हैं गौर से तो हमें पता चलता है कि सुग्रीव जी के अंदर में बहुत सारे अवगुण भी थे। इवन भगवान श्री राम को प्रॉमिस करने के बाद उन्होंने फिर भी भगवान जी के साथ उन्होंने जो वादा किया था, जब भगवान ने बाली को मार दिया और उसको किष्कंधा का राज मिल गया तो वो भूल गए और मजा करने लगे और ये याद ही नहीं रहा कि मुझे श्री राम जी के एक कार्य को संपन्न करना है और सीता जी को वहां से लेकर आना है, वो सब उसके याद, क्योंकि मजा इतने टाइम के बाद जब वो थक थक के उसको ये मिला था राज्य, तो फिर वो भूल गया था कि मुझे और भी कुछ करना है। लेकिन याद दिलाया हनुमान जी ने, भक्तों का संग हमें क्षण क्षण में भगवान के साथ अपना विस्मरण जो नाता है वो याद दिलाता है। तो हनुमान जी ने उसे याद दिलाया कि देखो भगवान के साथ आपने यह वचन दिया था कि हम माता सीता को ढूंढने में उनकी सहायता करेंगे भक्ति महारानी के लिए, तो फिर अब आप इसमें अपने राज्य में इतना व्यस्त हो गए हो कि वो तो इस तरह से बहुत, श्री राम को तो बहुत दुख होगा और लक्ष्मण जी भी आए थे बहुत क्रोधित होकर। लेकिन चाहे कोई कोई भी आ जाए, संसार की कोई भी शक्ति, लक्ष्मण जी साक्षात अनंत शेष जहाँ पर आ जाए अपनी हुंकार करने के लिए, तो उसका भस्म हो जाना तो अनिवार्य है। लेकिन जहाँ पर भक्त है, जहाँ पर हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने पहले ही व्यवस्था कर दी कि मुझे कैसे बचाना है। जिस जो अगर कोई वास्तविक में आपका भक्त, आपको भक्त का संग मिल जाए ना, तो समझो ना आपसे भक्ति दूर है और ना ही भगवान दूर है। तो आपके अंदर जो अवगुण है ना, उनको इतना पॉइंट करने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर ये अवगुण है, मेरे अंदर ये अवगुण है, मेरे अंदर ये अवगुण है, मैं भक्ति नहीं कर सकता। नहीं, आपको भक्ति में उन्नति करनी है, भक्तों का संग। हमें भगवान ने बहुत अच्छी कृपा दी है कि हम सब मिलकर कर रहे हैं ना। देखो, ग्रुप में ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अलग अलग हैं, कौन सबसे पहले उठा है, किसने पहले माला खत्म कर ली, किसने पहले श्लोक सुन लिया है, कौन ज्यादा कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। तो ये सब एक संग है, ये कृष्ण की असीम कृपा है कि भले छोटे लेवल पर हम इतने बड़े भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों का संग जो है वो हमें दुराचार से बचाता है और भगवान के करीब लेकर आता है। और एक दिन भगवान वहां पर आ ही जाते हैं जहां पर भक्त मिलकर भक्ति करते हैं, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं। तो ये है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? परम श्रद्धालु, कि भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है, वही वास्तविक सत्य है और इसके अंदर उसकी पूरी श्रद्धा। सबसे पहला गुण आपको भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए पहला गुण है आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? मुनयो। मुनयो का मतलब होता है गंभीर होना चाहिए, मननशील होना चाहिए। ऐसा नहीं बस जो भी सुन लिया उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपको अपनी मति के अनुसार शास्त्रों को भी देखना है। ऐसा नहीं जिस कथा में बैठ जाओ और पता चल जाए कि भाई ब्रह्म ही भगवान है, तो आप उसी ब्रह्म को ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, लेकिन आगे परमात्मा और भगवान जो तीसरे दो दूसरे दो फेज बताए उनके विषय में जानो ही नहीं। ठीक है, बस उसने कह दिया कि ब्रह्म ही सब कुछ है, निराकार ही भगवान का एक ही रूप है, तो उसको एक्सेप्ट करना नहीं। आपको मननशील होना चाहिए। जो भक्त होता है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो जरूर हर चीज को गंभीरता से सोचता है, शास्त्र को समझने का प्रयास करता है और ज्ञान वैराग्य युक्त है। अब जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, जो भगवान की भक्ति करेगा, तो पहले ही बोला जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतु, तो उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य नेचुरली आ जाएगा। उसके लिए उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। और जब उसके अंदर श्रद्धा है, वो मननशील है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त है, तो क्या होगा? पश्यंत यात्मनि चात्मानम। पश्यंत का मतलब होता है देखते हैं, आत्मनि का मतलब होता है अपने अंदर। ठीक है, किसको देखते हैं? आत्मानम। ठीक है, पश्यंत आत्मनि च आत्मानम। तो ये आत्मानम का मतलब होता है परमात्मा को, यानी भगवान को। अब यहाँ पर च लगा हुआ है बीच में, उसको आप दो देख रहे हो ना आप श्लोक को, पश्यंत आत्मनि च आत्मानम। ये जो च का मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है और या तथा। अब और यहाँ पर क्यों लिखा है? पश्यंती आत्मानम, पश्यंती आत्मनि आत्मानम लिख लेना चाहिए। च क्यों लिखा है? कि वो भीतर, आत्मनि आत्मनि मतलब अपने भीतर, अपने हृदय के भीतर और परमात्मा को। ऐसे तो जुमला नहीं बनता है ना। आत्मा में और च का मतलब होता है अपने आत्मा में। पश्यंत आत्मनि आत्मानम, आत्मनि का मतलब होता है अपने भीतर देखते हैं, और च का मतलब होता है और। और का मतलब होता है वो बाहर भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको भगवान के दर्शन केवल हृदय के अंदर होते हैं, वो बाहर विग्रह में भी भगवान को ही देखते हैं। जो भगवान की वो भक्ति करते हैं, जिस भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, जिस भगवान की वो सेवा कर रहे हैं, उसमें उस भगवान को साक्षात वो रियलाइज करते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान से बात करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। उस प्रेम का आदान प्रदान वो उसी समय उसका स्टार्ट हो जाता है जब वो भक्ति करना स्टार्ट होता है। यानी कि पश्यंत आत्मनि चात्मानम, वो बाहर भी भगवान को देखते हैं, स्व का मतलब होता है और आत्मनी मतलब अंदर में, किसको? आत्मानम। और किस तरह से उनके अंदर इतना ज्यादा पावर, इतना ज्यादा पावर आ जाता है कि वो भगवान को देख सकते हैं। चलो अंदर भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य से भी युक्त होते हैं और श्रद्धा भी आ जाती है। वो किस तरह से इतना सारा आयोजित कर देते हैं? तो साफ सा बोला, भक्ति से। हाँ, पश्चिम आत्मनि आत्मानम भक्त्या, भक्ति से प्राप्त करते हैं, सब भक्ति से उनको मिल जाता है। जब वो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके अंदर श्रद्धा भी आ जाती है, ज्ञान भी हो जाता है, वैराग्य भी हो जाता है और वो अपने हृदय के अंदर और हृदय के बाहर यानी कि संसार में भी भगवान को देख सकते हैं। पश्यन्ति मतलब देख सकते हैं, किससे? भक्ति के जरिए। अब यहाँ पर एक अंतिम प्रश्न उठता है कि आखिर उनके पास भक्ति कैसे आई? भक्ति से सब कुछ होने वाला है तो भक्ति कैसे आई? तो लास्ट वर्ड उन्होंने कहा, श्रुत गृहीतया। देखो, भक्ति प्राप्त करनी है ना, ये अगर जानना है कि भक्ति कहाँ से मिलती है तो सुन लीजिए कि भक्ति केवल श्रुत, श्रुत का मतलब होता है शास्त्र, वेद यानी सुनना। जब आप श्रवण करते हो किसी भक्ति को, अगर आप मतलब किसी गुरु महाराज से, वास्तव में इसका मतलब यही है, श्रुत गृहीतवा का मतलब यही है कि गुरु के मुख से श्रवण करना, यही एकमात्र भक्ति प्राप्त करने का सरल और सुगम उपाय है। यदि आप किसी प्रामाणिक गुरु से श्रवण कर रहे हो तो समझो आपको भक्ति मिल गई। फिर उसके बाद हृदय परिवर्तन हो जाना, हृदय के अंदर समस्त बुराइयों का खत्म होना, ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य और भगवान के दर्शन, ये सब सुलभ हो जाता है। सबसे ज्यादा पहला कार्य क्या है? शुद्ध आपको श्रवण करना है किसी गुरु से। अब हम लोग रोजाना प्रार्थना में सुबह को ऐसे पढ़ते हैं ना, गुरु मुख पद्मावख्या सीते करिया, कि गुरु मुख से जो पद्म जैसे, कमल जैसे वाक्य निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं ना गुरु के मुहारविंद से, वो चित्ते करिया क्या, वो चित्त को एकदम भगवान के चरणों में स्थापित कर देते हैं। और मुझे उन शब्दों को श्रवण करने के अतिरिक्त आराधना करी हमने आशा, और उन वाक्यों को श्रवण करने के अतिरिक्त, गुरु महाराज से श्रवण करने के अतिरिक्त मेरी तो और कोई आशा ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ प्राप्त होने वाला है, क्या? ज्ञान वैराग्य और भगवान की प्राप्ति, ये केवल और केवल अपने गुरु महाराज के मुख से श्रवण करके ही मैं प्राप्त करूंगा। मुझे इतनी श्रद्धा है अपने गुरु महाराज के परम वाक्यों के ऊपर कि वही मेरा कल्याण करेंगे। तो भगवान की इस परम भक्त गुरु महाराज के मुखारविंद से श्रवण करने के अतिरिक्त मेरी और कोई आशा है ही नहीं। और यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि आपको जो कुछ भी मिलने वाला भक्ति में, वो क्या? श्रुत, श्रुति से। लेकिन खाली श्रवण करना ही काफी नहीं, आखिर में एक शब्द बोला गृहीतया। गृहीतया का मतलब होता है भली भांति ग्रहण किया गया। ऐसा नहीं है कि आप गुरुमुख से श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो गधे और बैल की तरह खाली, वो भी सुनते हैं। लेकिन गृहीतया का मतलब होता है उनको ग्रहण करना है, गुरु महाराज ने जो वाक्य कहे हैं उनको अपने जीवन में उतारना है। जैसे मानो गुरु महाराज ने बहुत 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 विषय उसके भगवान के नाम के विषय में बताया कि भगवान का नाम बहुत ही सुंदर है, भगवान का नाम जप करने से आपके हृदय की मलिनता साफ हो जाएगी, भगवान का पवित्र नाम जप करने से भगवान को आप हृदय में देख सकते हो, बाहर भी देख सकते हो, भगवान का पवित्र नाम ही जीवन का लक्ष्य है, आपको भगवान के पवित्र नाम को सीरियसली लेना है और है ना सवेरे उठकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना है ताकि उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, आपको श्रवण करना, आपको अध्ययन करना है, विग्रह सेवा करनी है। तो गुरु महाराज के जो आदेश है कि आपको चार नियम का पालन करना है, ये करना है, तो उसको ग्रहण करके श्रुत गृहीतया कि भक्त को खाली श्रवण नहीं करना है, उसको ग्रहण करना है। और देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, श्रद्धा नाम होना, यानी कि सबसे पहले क्वालिटी उनके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा आपकी अपनी होगी, ऐसा नहीं कि श्रद्धा आपको कोई और देगा, श्रद्धा अपनी होगी तभी आप अपने भक्तों का संग करोगे, श्रद्धा अपनी होगी तभी आप भगवान के विषय में सुनोगे। तो श्रद्धा डेवलप करने के लिए भक्तों का संग करना होता है, लेकिन इच्छा आपके अंदर अपनी होनी चाहिए। तब श्रद्धा दाना मुनयो, गंभीर होना चाहिए। और अगर आप गंभीरता से श्रद्धा से श्रवण कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो क्या होगा, ज्ञान वैराग्य युक्त है, ये तो नेचुरली आपको प्राप्त होगा। और पश्यन्ति आत्मनिचात्मानम्, हृदय के अंदर और बाहर भी भगवान का दर्शन करोगे, किस तरह से, भक्ति से। और भक्ति कैसे प्राप्त होगी, शुद्ध गृहीतया, श्रवण करने से, और श्रवण जो आपने किया है उसको ग्रहण करने से आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और इस तरह से आप परम तत्व को हर जगह देख सकते हो। तो ये सरल उपाय बताया कि भगवान को हम कल, यही हमारा प्रश्न था कि परम तत्व को किस तरह से प्राप्त किया जाए, तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। और भक्ति को सरल शब्दों में बताया, शुद्ध गृहीत है, जो आप श्रवण करते हो महान आचार्यों से, गुरुजनों से, जो श्रवण करते हैं उसी से आपकी भक्ति डेवलप होती है, और बाकी सब ज्ञान वैराग्य श्रद्धा ये सब आता उसी से। तो भक्तों का संग करना चाहिए, और जो बलिष्ठ भक्त है हमसे, जो ज्यादा अना सीनियर है, उनसे श्रवण करना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि अब आप लोग का दुर्भाग्य है कि आपको मुझसे सुनना पड़ता, बट ये हम सुन रहे हैं एज इट इज, जो शब्द हैं वो जो लिखे हुए हैं श्रुत्य का, इसीलिए देखो श्रुत्य का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है वेद से, यानी जो शास्त्र से श्रवण करता है, जो शास्त्र को एज इट इज यदि कोई पढ़ रहा है तो वो व्यक्ति को नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो बोला जा रहा है ना जो शास्त्र, वो 100% प्रमाणिक है, उसकी बात हो रही होती है। हम श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परम सत्य की पूर्ण अनुभूति, परम पूर्ण परम सत्य भगवान वसुदेव के भक्ति योग के द्वारा की जाती है। अगर भगवान परम सत्य को प्राप्त करना है तो भक्ति के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। बाकी बहुत सारे योग हैं, क्या ध्यान योग है, ज्ञान योग है, और वो कर्म योग है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए खाली भक्ति योग ही भक्ति योग ही किया जाता है। ब्रह्म उसका शारीरिक तेज है और आत्मा आंशिक स्वरूप है, फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति मात्र है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया कि जो पहले वाले 11 नंबर श्लोक में बताया था ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तो ब्रह्म क्या है, केवल आंशिक स्वरूप शारीरिक तेज है, और परमात्मा क्या है, परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति है, लेकिन वास्तव में वो भगवान है। और भगवान को भक्ति से, भक्ति का मतलब होता है साकार सेवा, जिसे आप प्रेम करो, जिसे आप अपना संबंध जोड़ो। यदि वो निराकार है तो क्या संबंध जोड़ेंगे उसके साथ, कैसे प्रेम करेंगे उसके साथ। तो वास्तव में भक्ति से ही भगवान को अनुभव किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, चार टाइप के मनुष्य होते हैं। मनुष्यों की चार कैटेगरी क्या है, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कुछ लोग कर्म योग से भगवान को जानते हैं, कुछ ज्ञान योग से, कुछ योगी होते हैं जो योग साधना करते हैं, और कुछ भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, कर्मी क्या करते हैं, बस सब काम कर्म करते रहते हैं, ये करूं तो ये प्राप्त हो जाए, ये करूं तो ये प्राप्त हो जाए। किंतु शेष तीन आध्यात्मवादी होते हैं। अब कर्मी क्या होते हैं, वो खाली भौतिकतावादी होते हैं, लेकिन शेष तीन कौन से, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, ये सब आध्यात्मिकवादी होते हैं। प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिकवादी वे भक्त हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। अब परम पुरुष का साक्षात्कार मतलब भगवान को समझ लिया है, उन्होंने ये जान लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। जो ये जान लेते हैं वो प्रथम श्रेणी के, नंबर वन के आध्यात्मिकवादी कौन से हैं, जो क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, के भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो ये जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, वो नंबर वन के आध्यात्मिकवादी हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, दूसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। यानी कि पूर्ण भगवान का आंशिक साक्षात्कार क्या, वो वास्तव में भगवान है, उनका स्वरूप है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, हृदय के अंदर है, परमात्मा के रूप में। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। खाली ऐसा पता चलता है कि हृदय के अंदर एक ज्योत है टिमटिमाती हुई और वही भगवान है, तो ये तीसरे नंबर के हैं, यानी जो ब्रह्म के उपासक हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, भक्त्या मां अभिजानन्ति, केवल मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य रहते हैं। अब भक्ति क्या, भक्ति का क्या मतलब होता है, श्रवण करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होना तो अनिवार्य है। आप यदि सदैव बलिष्ठ सीनियर भक्तों से श्रवण करते रहोगे अनाशास्त्र का, तो ज्ञान तो होगा ही ना, और साथ में वैराग्य खुद ब खुद आएगा। ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं, क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं। अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अगर परम सत्य के दूसरे दोनों फेस यानी ब्रह्म और परमात्मा वो अपूर्ण है, वो इनकम्प्लीट है। परम सत्य है बट वो अपूर्ण अनुभव है, वो अपूर्ण अनुभूतियां हैं। तो फिर उन तक पहुंचने के यानी कि ज्ञान और वैराग्य तक पहुंचने के जो साधन है, जैसे ज्ञान और योग, यानी अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। तो फिर इन दोनों से यानी ज्ञान और योग से, ज्ञान योग से और समाधि में स्थित हो जाने से, या फिर योग का मतलब होता है केवल योगी बन जाना, इससे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर किससे कर सकते, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु जो परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। सिर्फ अगर आप जिज्ञासु हो, आपके अंदर श्रद्धा है, तो आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है, भगवान की भक्ति करना, उसी से आपको प्राप्त होंगे। ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त नहीं होंगे। ज्ञान और वैराग्य तो खुद ब खुद आ जाएंगे जब कोई भक्ति करेगा, लेकिन जो खाली ज्ञान और वैराग्य के पीछे भागता रहेगा, भक्ति उसके अंदर नहीं आएगी। आपको भक्ति के पीछे भागना पड़ेगा। भक्ति खुद नहीं आती है, उसको उसके पीछे कैसे भागना पड़ेगा, श्रुत गृहीता है, श्रवण करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, फिर आएगी। क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा सांसारिक वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं श्रुत गृहीता, तो भक्ति बहुत बहुत दृढ़ होती जाती है। जितना जितना हम श्रवण करेंगे ना, उतना ही उतना हमारी भक्ति बहुत ही दृढ़ होती है। अतः भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मिकवादियों के लिए नहीं है। यहाँ पर साफ साफ श्री प्रभुपाद ने बोला बेवकूफ लोग भक्ति नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे बोलते ना कि बेवकूफ लोग भक्ति करते हैं बाकी ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी जो भगवान की शक्ति हमेशा बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो भक्ति अल्पज्ञ आत्मवादियों के लिए नहीं। अल्पज्ञ कौन है, जो कि भगवान को परमात्मा या ब्रह्म ही समझते हैं। जो भक्त होता है भगवान को क्या समझता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये भी ब्रह्म भी भगवान है, परमात्मा भी भगवान है और भगवान का साक्षात स्वरूप भी है। लेकिन अल्पज्ञ क्यों नहीं है, जो भगवान को नहीं समझ पाते, केवल ब्रह्म और परमात्मा तक ही अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं, वहीं तक उसी में जकड़ कर खुद को रख देते हैं और भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो अतः यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर लिखा है कि अतः भक्ति अल्पज्ञ आत्मवादियों के लिए नहीं होती है। भक्ति की भी तीन श्रेणियां हैं। अब यहाँ पर भक्तों की तीन श्रेणियां बताई जा रही हैं। इनको हमें देखना है कि हम कौन से स्तर पर हैं। हम तो पता नहीं, मैं अपने बारे में कहूँ को भक्त कहलाने के भी योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर श्रवण करते हैं कि पहले कौन सी है, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय, तीन श्रेणियां हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त ज्ञान विहीन होते हैं। अब तीसरे नंबर से शुरू कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, जो अभी नए नए आते हैं, तथा भौतिक संगति से
विरक्ति भी नहीं होती। अब ज्ञान नहीं है तो जाहिर सी बात है अभी तक उन्हें भौतिक इच्छाएं भी होती है उनके अंदर, वो नए नए भक्त होते हैं। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकर्षित होते हैं। उनको क्या लगता है कि बस भगवान इस विग्रह के अंदर है, हमें क्या करना है भगवान को। अच्छा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं विग्रह को, कि विग्रह अच्छी हमारे घर की भगवान अच्छे लगने चाहिए। और ज्यादातर लोग हमें क्या करते हैं भगवान को बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं कॉमेंट्स करते हैं कि नहीं भगवान अच्छे लगने चाहिए, बाकी मेरे अंदर कितनी भक्ति है कितनी श्रद्धा है उसको नहीं देखते, कितना हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कितना भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना कीर्तन कर रहे हैं उसको नहीं। खाली यहाँ पर देखो श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैंने कह लिया श्रीला प्रभुपाद जी कहते वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा के प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति आकर्षित होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं, यानी कि वो अभी तक भक्ति के रस को नहीं चखा, उन्होंने सिर्फ विग्रह को ही सब कुछ समझते। ऐसा भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। उनको मुक्ति के विषय में मुक्ति मिलेगी मुझे या कृष्ण संग प्राप्त होगा ये सब नहीं, बस भौतिक लाभ, कुछ भौतिक लाभ के लिए ही वो भगवान के विग्रह सेवा करता है। अतः मनुष्यों को इस भौतिक भक्त से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है, यानी कि खाली विग्रह की सेवा को ही जीवन नहीं बनाना है, उससे आगे बढ़कर आपको सेकंड नंबर की पोजीशन पर आना है, यानी कि एक होता है कनिष्ठ और दूसरा होता है मध्यम अधिकारी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मध्यम अधिकारी के विषय में बोल रहे हैं कि आपको मध्यम अधिकारी के विषय में तो एटलीस्ट आना चाहिए। वो कैसे होते हैं तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में चार तत्व दिखाई पड़ते हैं। अब उसको चार चीजें, उसमें तो खाली उसको विग्रह ही दिखाई दे रही थी और उसको कोई जीवन का दूसरा लक्षण नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसको चार तत्व दिखाई होते हैं। कौन कौन से? ईश्वर, भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। फिर आपके अंदर सेकंड टाइप का जो मध्यम अधिकारी है ना, उसको ये सब पता होने चाहिए कि ईश्वर कौन है, बाकी भक्त हैं उनके विषय में, अज्ञानियों के विषय में और ईशालियों के विषय में पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये सब ज्ञान आपको पता होना चाहिए कि कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन अज्ञानी है, कौन ईशालु है, मुझे किसका संग करना है, मुझे किस तरह से भक्ति करनी है और भगवान वास्तव में कौन है, वास्तविक भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, ये सारा ज्ञान मध्यम अधिकारी को होना चाहिए। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है जिससे वह परम सत्य को जानने का अधिकारी बनता है। अब खाली विग्रह पूजा करते रहो, ना भक्तों का संग कर रहे हो आप और ना ही श्रवण कर रहे हो, ना भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हो, तो फिर आप ना आगे नहीं बढ़ सकते। आपको भक्तों का संग करना है और जो मध्यम अधिकारी है ना उसको ये पता होता है कि कौन कौन से भक्त को मुझे संग करना है। ऐसा नहीं कुछ लोग अभक्त मतलब न्यू डिवोटीज होते ना वो किसी को भी चुनकर बस किसी को भी उसके वास्तविकता को नहीं जानते उसका संग करना शुरू कर देते, ऐसा नहीं है। उसको जो मध्यम अधिकारी है उसको भक्तों की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा भक्त होता है। वास्तव में अगर आप भक्त को चुनना चाहते हो ना तो सबसे पहली उसकी क्वालिटी है निंदादिशूनीय हृदय। उसके हृदय में किसी के लिए निंदा नहीं होगी, वो सबको प्रणाम करेगा, सबका आदर करेगा, ये नहीं है कि सबको फॉलो करेगा लेकिन आदर सबका करेगा, किसी की निंदा में समय व्यस्त नहीं करेगा। वो क्यों नहीं निंदा करता जानते हो? क्योंकि भक्त को ये रियलाइज हो जाता है कि मुझसे ज्यादा घिनौना कोई मनुष्य हो नहीं सकता। वो संत तुलसीदास कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जितना कोई कुटिल कोई खल कोई बदमाश कोई गंदा व्यक्ति हो नहीं सकता। कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं विष्ठा के अंदर पड़ा हुआ कीड़ा भी मुझसे ज्यादा अच्छा है और मैं उससे भी ज्यादा, मतलब भक्त को अपना स्तर इतना भक्त को पता होना चाहिए। भक्त की क्वालिटी है विनम्रता, उसे पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। और वास्तव में आजकल हम जैसे तथाकथित सो कॉल्ड भक्त हैं वो बड़ा किस चीज पर अभिमान करेंगे, उनको तो वैसे ही गिरी हुई स्थिति है, पता नहीं भगवान ने किस तरह से ये ना कृपा दे दी है कि हम श्रवण कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, वास्तविकता में हम बिल्कुल इस के मैं अपनी बात करूं कि बिल्कुल भी योग्य नहीं है, तो भक्त को ये देखना है कि किसका मुझे संग करना है और किससे श्रवण करना है और कौन भक्त है कौन अज्ञानी है, इनको जांचना है और भक्तों का संग करना है और उसके साथ मिलकर यानी कि विग्रह पूजा से आगे बढ़ने का क्या है कि श्रवण और कीर्तन को ज्यादा समय देना है और भगवान के ना भक्तों का संग करना है, जो बहुत ज्यादा हमारे अच्छे भक्त हैं उनका संग करेंगे तो हमारी भक्ति में उन्नति होगी। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी आदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं, मतलब जो तृतीय श्रेणी का यानी जो कनिष्ठ अधिकारी है उसे क्या करना चाहिए, भक्ति संबंधी आदेश प्राप्त करने चाहिए। किससे? प्रामाणिक स्रोतों से, जो वास्तविक में जो शुद्ध भक्त हैं प्रामाणिक स्रोत बताते हैं हमें, उनसे भक्ति संबंधी आदेश यानी श्रवण करना चाहिए। पहला भागवत सुस्थापित भक्त है, सुस्थापित यानी कि पहला भागवत क्या है, जो वो भक्त जो भागवत के प्रति आचरण करता है, जो भागवत में वास्तव में भक्त जो होता है ना वो चलता फिरता भागवत है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पिछला प्रभुपाद पहला भागवत सुस्थापित भक्त है। दूसरा है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है, दूसरा भागवतम जिसको हम रीड करते हैं। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। वास्तव में ये जो श्रुति गृही तया है ना उस पर श्री प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी सच्चे भक्त के पास जाना चाहिए जो वास्तव में भगवान भी कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते हैं ना परिपृष्ट है ना सेवाया, कि आपको एक शुद्ध भक्त के पास जो तत्वदर्शी हैं उनके पास जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनसे श्रवण करना चाहिए। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो ऐसे नहीं करते, वो बस बोलते हैं बस मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ विग्रह पूजा में संतुष्ट होते हैं, लेकिन जो मध्यम अधिकारी होते हैं ना वो क्या करते हैं एक वास्तविक भक्त के पास जाकर उनसे श्रवण करने का की प्यास ना प्रकट करते हैं। जैसे ये सोनिक आदि ऋषिगण क्या कर रहे हैं कि हम श्रवण करना चाहते हैं, सूत जी को बोल रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गए हमें और कुछ नहीं करना है, हम केवल श्रवण करना चाहते हैं। तो ऐसे भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होते जो भागवत को व्यापार समझ कर अपनी जीविका कमाता है, ऐसा नहीं है, उनके पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे भक्त वो नहीं होते, जो सच्चे भक्त है ना वो ऐसा नहीं करते हैं, व्यवस्था ही नहीं बनाते, इसको अपना धंधा नहीं बनाते हैं, बल्कि करुणा से दूसरों के कल्याण के लिए ये भागवत का प्रचार करते हैं। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी जैसा सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति संप्रदाय का उपदेश करना चाहिए। ऐसा किसका प्रतिनिधि होना चाहिए? सूत गोस्वामी जी का, जो सूत गोस्वामी दूसरों के कल्याण के लिए बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराजा परिषद के कल्याण के लिए बता रहे हैं, उनको इससे कोई लाभ नहीं चाहिए, वो क्या चाहते हैं कि इससे चतुर्दक कल्याण होगा। ऐसे बोले, उन्होंने भी बोला था ना कि ये आपने जो इतने अच्छे प्रश्न किए हैं वो मानवता का कल्याण करेंगे, वो संसार का कल्याण करेंगे। तो केवल उनके भाव क्या होते हैं श्रुनाने के टाइम पर कि मैं ये जो भागवत कथा श्रवण करा रहा हूँ ना उससे खाली कल्याण की आशा है मुझे कि समस्त जीवों का कल्याण, उसके बदले मुझे लाभ चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान लोग करेंगे और मेरा आदर करेंगे या मुझे दान देंगे, ये सब जो करता ना वो सच्चा भक्त नहीं होता। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे और कहते हैं नवदीक्षित भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं होती है। शुरू शुरू में ना लोग प्रामाणिक लोग से सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो अगर श्रवण भी करते हैं तो क्या सोचते हैं कि मजा नहीं आया कथा में मजा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे इसकी कथा में मजा नहीं आता क्योंकि एक एक शब्द को इतना डीपली पढ़ाते हैं, इतना टाइम भी लेते हैं इतना, और एक एक शब्द की इतनी व्याख्या, तो उसमें यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो श्रवण में रुचि नहीं रखता, जो प्रामाणिक शब्दों को जो एविडेंस बताया जा रहा है उसमें जो श्रवण में रुचि नहीं रखता तो समझ जाओ कि वो कनिष्ठ भक्त है। यहाँ पर साफ साफ है श्रील प्रभुपाद के वचनों को अगर आप देख सकते हो तो देखो, शास्त्र कहता है नवदीक्षित भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं होती है। ऐसा नवदीक्षित भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है, बस मजा जिसमें आ जाए, थोड़ा डांस हो, थोड़े मजे हो, थोड़ा कीर्तन हो, कहानियां बताई जाए, किससे बताई जाए, दो चार जोक भी बताए जाए, और ऐसे बस मजा भी कर रहा हूँ भाई, मैं श्रवण तो कर ही रहा हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं हंसते हंसते भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई हंसते हंसते नहीं, भक्ति गंभीरता, यहाँ पर साफ साफ गंभीर वर्ड मनन कहा गया, क्या तशद्दाना मुनयो, ये बहुत ही सीरियस बात है। भक्ति करना कोई मजाक की बात थोड़े है, सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, श्रवण करने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला बिगड़ चुका है, अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जो मजाक में जो श्रवण करते हैं, जो बस ऐसे ही प्रामाणिक बात नहीं बताते, जो सही तरह से प्रचार नहीं कर रहे, श्रील प्रभुपाद जी बोलते उसी के कारण ये सारा मामला बिगड़ चुका है। कोई सीरियस भक्ति में आ ही नहीं रहा है, बस टाइम पास और टाइम एंजॉय करने को। भक्ति भी एंटरटेनमेंट के लिए की जा रही है, भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, भक्ति के जरिए आनंद नहीं आ रहा है, भक्ति में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं कि बस एंटरटेनमेंट में भक्ति ढूंढ रहे हैं कि एंटरटेनमेंट में भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आनंद नहीं ले रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके कारण क्या हुआ है, सारा मामला बिगड़ चुका है, दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निस्संदेह दिव्य विषय है, किंतु तो भी किसी व्यवसायिक व्यक्ति से उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार विषाक्त कर देते हैं जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। भले श्रीमद् भागवतम ही वो पढ़ के सुना रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता ही पढ़ के सुना रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि ये दिव्य विषय है, निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दिव्य नहीं है, लेकिन वही श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता जो अमृत की तरह है, तो उन्होंने अपने विषयले जो वासनाएं हैं जो वो इसके अंदर डाल के तो इसको विषैला कर दिया। तो ऐसे विषैले भक्तों के जरिए नहीं सुनना चाहिए, अभक्त कहना चाहिए उनको, जो व्यवसाय समझते हैं या जो सिर्फ लोगों को ठगने के लिए ये सब, उसमें से आपको भक्ति करना नहीं सिखाते, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं होता है तो फिर कैसी भक्ति, वो कौन सी भक्ति है जो आप भक्त भक्ति कर रहे हो और आपके हृदय में कोई आकर्षण ही नहीं हो रहा है ज्ञान और वैराग्य के प्रति, आप कुछ सीखना नहीं चाह रहे हो, आप कुछ त्याग करना नहीं चाह रहे हो, कैसी भक्ति है वो। तो फिर श्री प्रभुपाद जी बोले ये सारा मामला इसी की वजह से बिगड़ा है कि जो सुना रहे हैं ना वो एज इट इज प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो खुद भी गंभीर नहीं है और दूसरों को भी गंभीरता से नहीं। अब कोई लोग बोलते हैं भाई वो गंभीर से अगर हम लोग करेंगे तो श्रवण नहीं करेंगे, वो नहीं करें, उनके अंदर श्रद्धा होगी। देखो पहली क्वालिटी भक्ति के अंदर क्या है, तत्श्रद्धदाना है मुनयो, कि उनके अंदर श्रद्धा होगी तो कैसे नहीं सुनेंगे, श्रद्धा होने के बाद वो श्रवण करेंगे और ज्ञान और वैराग्य आएगा, तुम तो सीरियस हो जाओ कम से कम। अतएव निश्चल भक्त को चाहिए कि उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्यकों तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए अन्य साहित्य को अपनी उन्नति के लिए सुने, कि अब निश्चल हो आप भक्ति करना चाहते हो तो आपको सीरियस होके उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को और जो गोस्वामियों ने आचार्यों ने हमारे लिए जो कुछ छोड़ा है, जो साहित्य जो लिटरेचर्स हैं, वो सब हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए अपनी उन्नति के लिए, कि हमें सीरियस होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है परम सत्य की जिज्ञासा और हम मजाक समझ रहे हैं उसको। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना सच्ची उन्नति नहीं हो सकती है, बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन व्यर्थ है। अगर आप श्रवण नहीं करना चाहते हो, यदि आप उन श्रवण में जो गंभीर आदेश है उनका पालन नहीं करना चाहते हो, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं बेकार में अपनी भक्ति का ये दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है, आपकी भक्ति उन्नति नहीं होगी उससे, ये दिखावा करने से। और भी आप लोगों में ये बताना चाहते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और भी उन्नति नहीं होगी और भी आप नीचे गिरोगे। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र प्रमाण जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को त्याज्य समझना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि श्रुति स्मृति पुराण वगैरह में जितने भी सिद्धांत आप समझ रहे हो, अगर पढ़ भी रहे हो, लेकिन आपको ज्ञान हासिल हो भी जाता है, लेकिन यदि उसके अंदर भक्ति सम्मिलित नहीं होती, कृष्ण के प्रति प्रेम या आकर्षण नहीं होता है, यदि ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं होते हैं, तो फिर ऐसे प्रदर्शन को त्याज्य समझना चाहिए। अवैध भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी साहब बता रहे हैं कि आपको मध्यम अधिकारी बनना चाहिए। जो भक्त अवैध है, जो सही तरह से भक्ति नहीं कर रहा है, उसे कभी भी शुद्ध भक्त नहीं समझना चाहिए। हमें भक्तों को समझना है। देखो, द्वितीय जो दूसरे मध्यम अधिकारी, उनको चार चीजें समझनी है। ईश्वर, भक्त, अज्ञानी तथा ईश्वर, इन सब में आपको डिफरेंस मालूम करना है कि वास्तविक में शुद्ध भक्त कौन है। किसी को भी आप शुद्ध भक्त की पदवी नहीं दे सकते। वैदिक सहायता से ऐसे संदेश को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि हमें किसी शुद्ध भक्त के जरिए वैदिक संदेश सुनने को प्राप्त हो जाता है और हम उसको आत्मसात करेंगे, तो फिर क्या होगा? पश्यन्ति आत्मनि ख्यात्मानम्। हृदय के अंदर और भीतर और बाहर भगवान का दर्शन करेंगे। और समाधि ये नहीं है कि आप जंगल में जाकर समाधि लगाओ। समाधि यही है कि आप जिस अवस्था में हो, वहीं पर हृदय में और बाहर भगवान का दर्शन करो। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि आपकी क्वालिटी क्या है कि आप एक शुद्ध भक्त से सुनते हो। आपके अंदर इतने गुण भले नहीं भी हो, लेकिन आप एक शुद्ध भक्त से श्रवण कर रहे हो और उसको ग्रहण कर रहे हो, तो बाकी सारी क्वालिटीज आपके अंदर खुद ही आ जाएंगी। ये भक्त्या श्रुत गृहीत है। भक्ति से भगवान प्राप्त होंगे और भक्ति किससे प्राप्त होगी? श्रुत गृहीत है। इसके मिलता जुलता एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट नंबर 26 में हमने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर है। भगवान ने कहा, अन्ये त्वेव मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाम्। अर्थात ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आत्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, यानी कि उनको कुछ खबर नहीं होती ज्यादा आत्मिक ज्ञान, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करते हैं। वो बस दूसरों से सुनते हैं और भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। मतलब श्रवण करना और कीर्तन करना कंटिन्यूस यही करते रहते हैं। इन लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पद को पार कर जाते हैं। बस प्रामाणिक व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप श्रवण कर रहे हो। हम सबका सौभाग्य कि हम श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से श्रवण करते हैं और वही एज इट इज शब्दों को हम सुनने का प्रयास और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पर प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पद को पार कर देते। फिर आगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जन्म मृत्यु का ये जो संघर्ष है, ये जो रास्ता है, कैसे पार होगा। बस आप श्रवण करो, कीर्तन करो, हर काम दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। भक्त्या श्रुत गृहीत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, समय बहुत हो गया।